रेटिंग मापने की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ रेटिंग स्केल, व्यवहार परक शोधों बिहेवियरल रिसर्चेस में रेटिंग मापने का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इन प्रयोगों से व्यवहार परक वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी समस्याओं का भी पता चला है जिनसे रेटिंग पर प्रतिकूल प्रभाव एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इन समस्याओं को निम्नांकित दो प्रमुख भागों में बांटकर विश्लेषण किया जा सकता है। क, वैसे कारक या समस्या जो रेटर को एक दुरुस्त साउंड रेटिंग करने की उत्सुकता विलिंगनेस को प्रभावित करते हैं। ख, वैसे कारक या समस्या जो रेटर को यथार्थपूर्ण एक्यूरेटली एवं सुसंगत ढंग से रेटिंग करने की क्षमता एबिलिटी पर प्रतिकूल प्रभाव एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। इन दोनों कारकों या समस्याओं का वर्णन निम्नांकित है। क, रेटर की उत्सुकता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेटर्स विलिंगनेस। व्यवहार परक वैज्ञानिकों ने रेटर की उत्सुकता से संबंधित दो तरह के कारकों को महत्वपूर्ण बतलाया है। एक, रेटिंग मापने का स्वरूप ऐसा होता है कि इसमें रेटर या प्रेषक को एक खास निर्देश के अनुसार कार्य करना होता है तथा उसे एक खास तरह की क्रियाविधि प्रोसीजर के अनुसार कार्य करना होता है। स्वाभाविक है कि इसमें रेटर को कुछ मानसिक कष्ट होता है तथा साथ ही साथ उसमें अधिक एकाग्रता की ज़रूरत होती है। अक्सर देखा गया है कि रेटर न तो इतना मानसिक कष्ट सहने के लिए तैयार रहते हैं और न ही इसकी गंभीरता को समझकर वे एकाग्रता दिखलाने के लिए तत्पर होते हैं। परिणाम यह होता है कि रेटर द्वारा किया गया रेटिंग दोषपूर्ण डिफेक्टिव हो जाता है। पैराग्राफ चेंज दो, प्रायः रेटर को उन्हीं व्यक्तियों या वस्तुओं या का रेटिंग करने के लिए दिया जाता है जिनके बारे में वह पहले से जानता हो। अक्सर कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति उनकी मनोवृत्ति अनुकूल होती है तथा कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति उनकी मनोवृत्ति प्रतिकूल होती है। जिन व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति उनकी मनोवृत्ति अनुकूल होती है उस व्यक्ति उन्हें अपनी रेटिंग में सभी गुणों पर कुछ अवांछित विशेषताओं के होने पर भी उसे अत्यधिक अनुकूल दिखला देता है। उसी तरह से जिन व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति उनकी मनोवृत्ति प्रतिकूल होती है उन्हें अपनी रेटिंग में कुछ वांछित विशेषताओं के होने के बावजूद भी अधिक नीचा दिखला देता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में रेटिंग दोषपूर्ण हो जाता है। पैराग्राफ चेंज ख, रेटर की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेटर्स एबिलिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि रेटर व्यक्तियों या वस्तुओं या का रेटिंग तो यथार्थ तथा वस्तुनिष्ठ रूप से करना चाहता है परंतु रास्ते में कुछ ऐसी बाधाएं हिंड्रेंसेस आ जाती हैं जिनसे रेटर की रेटिंग क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। थॉर्नडाइक एंड हेगन 1977 के अनुसार निम्नांकित कुछ ऐसे प्रमुख कारक फैक्टर्स हैं जिनसे रेटर की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा फिर उनके द्वारा किया गया रेटिंग दोषपूर्ण हो जाता है। पैराग्राफ चेंज एक, रेटिंग किए जाने वाले व्यक्तियों को प्रेक्षण का अवसर अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द पर्सन्स बीइंग रेटेड दुरुस्त एवं वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव्स। रेटिंग के लिए यह आवश्यक है कि रेटर को उन व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण करने का अवसर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्राप्त हो तथा साथ ही साथ उनका इन व्यक्तियों के साथ एक निकटवर्ती संबंध हो। अगर रेटर रेटिंग किए जाने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों से भली भांति परिचित नहीं है और उनका वह कई परिस्थितियों में व्यवहारों का प्रेक्षण नहीं किया जाता है तो उसके द्वारा किया गया रेटिंग वस्तुनिष्ठ एवं निर्भर योग्य डिपेंडेबल नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि शिक्षक समय निष्ठता के गुण पर किसी छात्र को मात्र उसके वर्ग में आने एवं उपस्थित रहने के आधार पर रेटिंग करते हैं तो उनका यह रेटिंग एक निर्भर योग्य रेटिंग नहीं भी हो सकता है क्योंकि संभव है कि अमुक छात्र वर्ग में समय निष्ठता का पालन करता हो परंतु अन्य परिस्थितियों में वैसा नहीं करता हो। अतः विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के प्रेक्षण का अवसर न मिलने से रेटर द्वारा दुरुस्त एवं वस्तुनिष्ठ रेटिंग की क्षमता प्रभावित हो जाती है क्योंकि ऐसी परिस्थिति में रेटर की भरपूर इच्छा होने पर भी रेटिंग सही नहीं हो पाती है। पैराग्राफ चेंज दो, रेटिंग किए जाने वाले शील गुणों में आत्मनिष्ठता सब्जेक्टिविटी इन द ट्रेड्स बीइंग रेटेड। व्यक्तित्व के कुछ शील गुण ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी अधिक होती है, फलतः ऐसे शील गुणों को आसानी से प्रेक्षण कर उसे सही सही ढंग से रेटिंग किया जा सकता है। प्रभुत्व डोमिनेंस बातुनीपना टॉक्टिवनेस समय निष्ठता पंक्चुअलिटी आदि कुछ ऐसे ही शील गुण के उदाहरण हैं। इसके अलावा व्यक्ति के कुछ शील गुण ऐसे होते हैं जिनमें आत्मनिष्ठता सब्जेक्टिविटी अधिक होती है, दुश्चिंता एंजाइटी आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, संवेगिक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल, अहम शक्ति, ईगो स्ट्रेंथ आदि कुछ ऐसे ही शील गुण के उदाहरण हैं। इन शील गुणों को सीधे निरीक्षण नहीं किया जा सकता है, अतः कुछ व्यवहारों से मिलने वाले संकेतों क्यूज के आधार पर इनके बारे में अनुमान लगाया जाता है। फलतः रेटर को ऐसे शील गुणों पर रेटिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है और उनके रेटिंग में भी अपनी अनुमानित व्याख्या की भूमिका अधिक हो जाती है, जिससे रेटिंग दोषपूर्ण हो जाता है। पैराग्राफ चेंज 3, शील गुणों के अर्थ में अस्पष्टता, वेगनेस इन द मीनिंग ऑफ ट्रेड्स। कुछ शील गुण ही ऐसे होते हैं जिसका अर्थ स्पष्ट वेग होता है, फलस्वरूप उसका अर्थ एक रेटर एक ढंग से समझता है तथा दूसरा रेटर दूसरे ढंग अर्थ में उसका प्रयोग करता है। इसका परिणाम यह होता है कि रेटिंग की वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाती है और रेटिंग निर्भर योग्य नहीं रह जाता है। जैसे यदि शिक्षकों के समूह को आत्म पर्याप्तता, सेल्फ सफिशियंसी के शील गुण के आधार पर छात्रों को रेट करने के लिए कहा जाए, तो संभव है कि एक शिक्षक आत्म पर्याप्तता से यह अर्थ लेकर सेटिंग करे कि छात्र के पास वे सभी चीज़ें और जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी है। दूसरे शिक्षक आत्म पर्याप्तता से यह अर्थ लेकर रेटिंग कर सकते हैं कि इससे आत्म आदर, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल तथा आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन आदि जैसे गुणों का पता चलता है। तीसरे शिक्षक आत्म पर्याप्तता का अर्थ शारीरिक विकास के लिए शारीरिक ऊर्जा, फिजिकल एनर्जी की प्रचुरता को लेकर रेटिंग कर सकते हैं। इन परिस्थितियों का परिणाम यह होगा कि रेटिंग की सुसंगतता, कंसिस्टेंसी समाप्त हो जाएगी और उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। पैराग्राफ चेंज 4, रेटर का व्यक्तिगत गुण। रेटर के कुछ व्यक्तिगत गुण होते हैं जिससे रेटिंग प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो जाती है। कुछ रेटर रूढ़िवादी होते हैं तो व्यक्तियों को अपमापनी के बीच में ही रेटिंग करेंगे, चाहे एक व्यक्ति का निष्पादन कैसा भी क्यों ना हो। ऐसे रेटर शायद ही कभी व्यक्ति को ऊंचा या अधिक नीचा रेट करते हैं। उसी तरह से कुछ रेटर कड़े मिजाज के होते हैं, वे शायद ही किसी व्यक्ति का ऊंचा रेट करते हैं। उसी तरह से कुछ रेटर व्यक्तिगत गुणों के अलावा कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी ऐसे होते हैं जिससे रेटिंग प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो जाती है। जैसे एक ऑफिसर अपनी खूबसूरत महिला स्टेनोग्राफर के निष्पादन का रेटिंग नीचा दिखला सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि महिला अपने ऑफिसर को कुछ नाजायज छूट नहीं दे पाती है। ऐसा संभव है कि उस महिला का निष्पादन वास्तव में अति उत्तम हो। स्पष्ट है कि न केवल रेटर का व्यक्तिगत गुण बल्कि व्यक्तिगत अनुभव भी रेटिंग को बुरी तरह प्रभावित करता है। पैराग्राफ चेंज 5, असमान संदर्भ मानक का होना। रेटर को प्रायः कुछ खास खास श्रेणियों में, जैसे रेटर श्रेष्ठ, सुपीरियर, उत्तम, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा, वेरी गुड तथा अच्छा, गुड आदि के रूप में रेटिंग करना पड़ता है। अब यहाँ एक रेटर किसी व्यक्ति को दिए गए शील गुण पर ऊपर से 5% के बीच में होने के कारण उसे श्रेष्ठ की श्रेणी में रखता है, तो दूसरा रेटर उसे अपने से 10% टॉप 10% के बीच में होने के कारण उसे श्रेष्ठ में रख सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि रेटर के पास श्रेष्ठ श्रेणी की व्याख्या करने की कोई उचित एवं समान मानक नहीं होता है। यही बात अन्य श्रेणियों के बारे में भी कही जा सकती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि रेटिंग मापनी, रेटिंग स्केल द्वारा आंकड़े संग्रह करने में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के उपाय पर यदि शोधकर्ता द्वारा ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया जाता है तो उनका शोध परिणाम दोषपूर्ण और निर्भर योग्य हो जाता है। पैराग्राफ चेंज रेटिंग में होने वाले महत्वपूर्ण त्रुटियां। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि रेटिंग मापनी द्वारा रेटिंग करने में रेटर द्वारा कई तरह की त्रुटियां होती हैं। इन त्रुटियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, नियत त्रुटि तथा परिवर्त्य त्रुटि। नियत त्रुटि वैसी त्रुटि को कहा जाता है जिसे रेटिंग लगातार एक खास दिशा में किया जाता है। शायद यही कारण है कि इसे नियत त्रुटि कहा जाता है। प्रमुख नियत त्रुटि 4 प्रकार की बतलाई गई है। परिवेश प्रभाव, कठोरता की त्रुटि, उदारता की त्रुटि, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि। परिवर्त्य वैसी त्रुटि को कहा जाता है जिसे रेटिंग किसी एक दिशा में, अर्थात बीच, ऊपर तथा नीचे केंद्रित नहीं होता, बल्कि कभी ऊपर कभी नीचे तो कभी बीच में हो जाता है। स्पष्ट है कि इस तरह की त्रुटि के कारण रेटिंग की दिशा अनियत होती है। प्रमुख प्रतिवर्त्य त्रुटियां हैं विरोध त्रुटि, तार्किक त्रुटि तथा निकटता त्रुटि, प्रॉक्सिमिटी एरर। इन सभी तरह की त्रुटियों के स्वरूप पर हम एक नज़र इस प्रकार डाल सकते हैं। पैराग्राफ चेंज 1, परिवेश प्रभाव, हालो इफेक्ट। रेटिंग मापनी में होने वाले नियत त्रुटियों में परिवेश प्रभाव से उत्पन्न त्रुटि का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवेश प्रभाव का सर्वप्रथम वर्णन वेल्स ने 1907 में किया था, परंतु 1920 में थॉर्नडाइक ने इसे वर्तमान नाम से संबोधित किया। एनास्टेसी 1968 के शब्दों में परिवेश प्रभाव से तात्पर्य अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा एक वैसे प्रवृत्ति से होता है जिसमें रीडर कोई एक अनुकूल या प्रतिकूलशील गुणों से इतना अधिक प्रभावित हो जाता है कि उस व्यक्ति के अन्य शील गुणों का निर्णय काफ़ी हद तक उससे प्रभावित हो जाता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। स्पष्ट है कि परिवेश प्रभाव हेलो इफेक्ट के कारण रेटर व्यक्ति को हमेशा सभी शील गुणों पर धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में रेटिंग करेगा, चाहे उस व्यक्ति का वास्तविक शील गुण जैसा भी हो क्यों न हो। उदाहरणार्थ जब शिक्षक किसी छात्र से अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण अधिक प्रश्न होते हैं तो वे उस छात्र को अधिकतर परिस्थितियों में या अधिकतर शील गुणों पर धनात्मक रेटिंग करेंगे, चाहे वह छात्र इस ढंग के धनात्मक रेटिंग के योग्य हो या नहीं हो। उसी ढंग से यदि शिक्षक किसी छात्र से नाखुश हैं तो वे अक्सर उस छात्र का ऋणात्मक रेटिंग करते हैं, चाहे उस छात्र की वास्तविक योग्यता या क्षमता कुछ भी क्यों ना हो। स्पष्ट है कि परिवेश प्रभाव से उत्पन्न त्रुटि का परिणाम यह होता है कि रेटिंग एक खास दिशा में अनावश्यक रूप से मुड़ जाती है। सिमोंडस ने अपने अध्ययन के आधार पर बतलाया है कि परिवेश प्रभाव हालो इफेक्ट से त्रुटि अधिकतर उन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होता है जहां रेटर को कुछ ऐसे शील गुणों पर व्यक्तियों का रेटिंग करना होता है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होते हैं, जिनका निरीक्षण स्पष्ट रूप से नहीं किया जा सकता है, तथा जो व्यक्ति के चरित्र से संबंधित होते हैं या जिनका नैतिक मूल्य अधिक होता है। इस ढंग की त्रुटि को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि शील गुणों जिसके आधार पर व्यक्तियों का रेटिंग किया जाना है उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाए, तथा जहाँ तक संभव हो वाद्य चयन विधि द्वारा रेटिंग कराया जाए। दो, कठोरता की त्रुटि एरर ऑफ सेवरिटी। इस ढंग की त्रुटि में रेटर व्यक्तियों को हमेशा नीचा रेटिंग करता पाया जाता है, चाहे व्यक्ति की क्षमता या शील गुण उससे अधिकाधिक ही क्यों न हो। इस प्रकार के रेटर को कठोर रेटर कहा जाता है। कर्लिंगर 1973 के शब्दों में अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा इस त्रुटि से तात्पर्य संबंध विशेषताओं पर सभी व्यक्तियों को अत्यधिक नीचा रेट करने की एक सामान्य प्रवृत्ति से होती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। यदि किसी शिक्षक में इस ढंग की त्रुटि पाई जाती है तो अक्सर छात्रों को 40% से अधिक अंक परीक्षा में देना नहीं पसंद करेंगे, चाहे छात्र के उत्तर का गुण क्वालिटी कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। इस ढंग की त्रुटि को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि बाध्य चयन विधि फोर्स च्वाइस मेथड का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ऐसी विधि में रेटर की एकांश आइटम के सभी वैकल्पिक अल्टरनेटिव समान रूप से अनुकूल या प्रतिकूल दिखाई पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्तियों को अत्यधिक नीचा करने में असमर्थ रह पाएगा, क्योंकि सभी वैकल्पिक अल्टरनेटिव इसके लिए समान दिखाई पड़ते हैं। पैराग्राफ चेंज। तीन, उदारता की त्रुटि एरर ऑफ लीनियंसी। यह त्रुटि कठोरता त्रुटि के ठीक विपरीत है। इसमें रेटर व्यक्तियों का रेटिंग इतना उदारतापूर्ण करता है कि वह सभी व्यक्तियों को सभी गुणों पर ऊंचा रेटिंग प्रदान करता है। अतः ऐसे रेटर को उदार रेटर कहा जाता है, जिसके द्वारा किया गया रेटिंग मापने के उच्च छोर की ओर केंद्रित होते हैं। इस तरह की त्रुटि होने पर शिक्षक छात्रों को 70% या उससे अधिक अंक अधिकतर छात्रों को दे देते हैं, चाहे छात्रों की उत्तर पुस्तिका का गुण उतना अच्छा हो या नहीं हो। इस ढंग की त्रुटि का नियंत्रण बाध्य चयन विधि द्वारा की जाती है। पैराग्राफ चेंज। चार, केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि। यह एक ऐसा त्रुटि है जिसमें रेटर अपना रेटिंग न ऊंचा छोर पर और न ही निम्न छोर पर रखता है, बल्कि वह अपना रेटिंग मापने के बीचों बीच रखना अधिक पसंद करता है। इस त्रुटि के कारण रेटर व्यक्तियों को अधिक ऊंचा एवं अधिक नीचा रखने में घबराते हैं और वे उन्हें किसी शील गुण या क्षमता पर बीचों बीच रखकर आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं। ऐसे शिक्षक जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि होती है, वे अधिकतर छात्रों को 50-55% के बीच अंक देकर छोड़ देंगे, चाहे वह उस छात्र की क्षमता उससे कम हो या अधिक हो। पैराग्राफ चेंज। इन प्रमुख नियत त्रुटियों के अलावा कुछ परिवर्तनीय त्रुटि भी है जिससे रेटर का रेटिंग प्रभावित होता है। ऐसे त्रुटियों में निम्नांकित प्रमुख हैं। पाँच, विरोध त्रुटि। इस तरह की त्रुटि की ओर सबसे पहले मरे ने 1983 ने लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। इस त्रुटि में रेटर अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं का रेटिंग अपने व्यक्तियों व्यक्तित्व में मौजूद शील गुणों के विपरीत दिशा में करता है। जैसे जिस शिक्षक में समय निष्ठा का शील गुण अधिक है और यदि वे छात्रों या किसी सहकर्मी को अपने से कम समय निष्ठ रेट करते हैं तो यह विरोध त्रुटि का उदाहरण होगा। पैराग्राफ चेंज 6 तार्किक त्रुटि लॉजिकल एरर। न्यूकॉम्ब 1931 ने इस तरह की त्रुटि की और सबसे पहले ध्यान दिलाया। इस टंकी त्रुटि में रेटर उन दो या दो से अधिक शील गुणों पर व्यक्तियों को एक समान रेट करता है जो उन्हें तार्किक रूप से समान लगते हैं। स्पष्ट है कि इस टंकी त्रुटि का आधार रेटर के मस्तिष्क में व्याप्त तार्किक समानता होता है। इस टंकी त्रुटि उस परिस्थिति में सर्वाधिक होता है जहाँ शील गुण जिस पर रेटिंग किया जाता है अमूर्त तथा परस्पर व्यापी होते हैं। पैराग्राफ चेंज 7 निकटता त्रुटि। बहुत कुछ तार्किक त्रुटि से यह त्रुटि मिलता जुलता है। इस प्रकार की त्रुटि उस परिस्थिति में अधिक होता है जब दो या दो से अधिक शील गुणों में निकटता अधिक होती है। यह निकटता समय टाइम या अर्थ मीनिंग के रूप में हो सकती है, जैसे सहयोगिता कोऑपरेटिवनेस तथा दोस्ती। दो ऐसे शील गुण हैं जिनके रेटिंग में अत्यधिक समानता पाई जाती है क्योंकि रेटर इन दोनों शील गुणों का रेटिंग एक समान ढंग से करता पाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में रेटर द्वारा किया रेटिंग में अनावश्यक रूप से सहसंबंध अधिक हो जाता है जो स्पष्टतः मिथ्या सहसंबंध का उदाहरण है। रेटिंग मापनी द्वारा मापन करने में उपयुक्त प्रकार की त्रुटियां अक्सर देखने को मिलता है। इन त्रुटियों से चूंकि रेटिंग दोषपूर्ण हो जाता है अतः यह आवश्यक है कि इन त्रुटियों को यथासंभव दूर करने के उपायों पर विचार किया जाए। पैराग्राफ चेंज रेटिंग मापनी को उन्नत बनाने के उपाय मेजर्स टू इम्प्रूव रेटिंग स्केल। चूंकि व्यापार परक विज्ञानों में रेटिंग मापनी का प्रयोग शोध समस्या के बारे में आंकड़े संग्रह करने में सर्वाधिक होता है, इसलिए वैज्ञानिकों का ध्यान इस मापनी की ओर अधिक उन्नत बनाने की ओर गया है। इसे अधिक उन्नत बनाने के कुछ प्रमुख कारगर उपाय निम्नांकित हैं। 1 रेटिंग मापनी के उद्दीपन चरों में शुद्धिकरण रिफाइनमेंट इन स्टिमुलस वेरिएबल्स ऑफ द रेटिंग स्केल। रेटिंग मापनी को उन्नत बनाने की दिशा में सबसे पहला कदम उस मापनी के उद्दीपन चरों को उन्नत बनाना है। उद्दीपन चर स्टिमुलस से तात्पर्य उन शील गुणों तथा क्षमताओं से होता है जिस पर व्यक्तियों का रेटिंग किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए शोधों से यह स्पष्ट हो गया है कि कुछ शील गुणों तथा क्षमता ऐसे होते हैं जिनका रेटिंग अधिक यथार्थता सुसंगतता तथा वस्तुनिष्ठता के साथ की जाती है, परंतु कुछ ऐसे शील गुण तथा क्षमता जिनका रेटिंग उतनी अधिक यथार्थता सुसंगतता तथा वस्तुनिष्ठता के साथ नहीं हो पाता है। बुद्धि इंटेलिजेंस समय निष्ठता शारीरिक स्वास्थ्य नेतृत्व यदि पहले तरह के शील गुणों के कुछ उदाहरण हैं जबकि सहानुभूति दयालुता विषाद आदि दूसरे तरह के शील गुण के कुछ उदाहरण हैं। इन विभिन्न शोधों के आधार पर शोध वैज्ञानिकों ने शील गुणों के बारे में कुछ सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया है जिनका पालन करने पर रेटिंग को अधिक वस्तुनिष्ठ तथा यथार्थ बनाया जा सकता है। इन नियमों में निम्नांकित प्रधान हैं। 1 शील गुण प्रत्येक शील गुण जिस पर रेटिंग किया जाने वाला है द्वारा सिर्फ एक ही तरह की क्रिया परिभाषित हो। 2 शील गुण ऐसा होना चाहिए कि उसे वस्तुनिष्ठ या एवं स्पष्ट शब्दों में परिभाषित करना संभव हो। 3 शील गुण का मूल्यांकन व्यक्ति के गत एवं वर्तमान प्रक्रियाओं के आधार पर न कि भविष्य की क्रियाओं के आधार पर करना चाहिए। 4 शील गुणों को परिभाषित करने में सामान्य शब्द कॉमन वर्ड्स जैसे प्राय हमेशा बहुत का यथासंभव प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इन शब्दों से शील गुण की उपयुक्तता का कोई अंदाज नहीं मिलता है। 2 रेटिंग मापने के अनुक्रिया चरों में शुद्धिकरण रेटिंग मापने के अनुक्रिया चरों से तात्पर्य वैसे अनुक्रिया विकल्प से होता है जो सामान्यतः आंकिक या निर्णयात्मक श्रेणी के होते हैं तथा जिस पर टिक लगाकर रेटर अपना रेटिंग करता है, जैसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट कुछ ऐसे ही विशेषणात्मक श्रेणी के उदाहरण हैं। ऐसी श्रेणियों में आत्मनिष्ठता अधिक होती है क्योंकि एक रेटर जिसे श्रेष्ठ कह रहा है संभव है दूसरा रेटर उसे बहुत अच्छा या उत्कृष्ट की ही श्रेणी में रखे, अतः स्पष्ट है कि इसमें रेटर का पूर्वग्रह सम्मिलित हो जाने की संभावना अधिक होती है। इसलिए शोध वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया है कि रेटिंग मापने के अनुक्रिया विकल्प को अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ बना दिया जाए। इससे फायदा यह होगा कि उसके आधार पर किया गया रेटिंग अधिक वस्तुनिष्ठ होगा। इसके लिए बाध्य चयन रेटिंग विकल्प तथा ऐसी श्रेणियां जिनसे रेटर के आपसी अंतरों का नियंत्रण होता हो का प्रयोग अनिवार्य कर देना चाहिए। 3 रेटिंग की क्रियाविधि को उन्नत बनाना इम्प्रूवमेंट इन रेटिंग प्रोसीजर्स। रेटिंग मापने द्वारा मापन करना तभी उन्नत हो सकता है जब रेटिंग की क्रियाविधि में सुधार लाया जाए। इस सुधार के लिए कम से कम 2 बातों पर ध्यान अनिवार्य है। पहला तो यह कि रेटर रेटिंग के कार्य में अनुभवी एवं प्रशिक्षित हो तो उसके द्वारा किए गए रेटिंग को एक साथ मिलाकर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला का प्रयोग कर हम एक उन्नत एवं विश्वसनीय रेटिंग प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट है कि यदि रेटिंग मापने के प्रयोग में ऊपर वर्णन किए गए सुझावों को ध्यान में रखा जाता है तो इससे एक उन्नत रेटिंग प्राप्त हो सकेगा। रेटिंग मापने का सामान्य मूल्यांकन जनरल इवेल्युएशन ऑफ रेटिंग स्केल व्यवहार परक विज्ञानों बिहेवियरल साइंसेस जैसे मानव विज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में रेटिंग मापने का प्रयोग अधिकतर किया गया है। रेटिंग मापने के एक निकटतम प्रतिद्वंदी हैं कोटिक्रम की विधि या कोटिकरण विधि। कुछ ऐसे अध्ययन किए गए हैं जिनमें रेटिंग मापनी तथा कोटिक्रम विधि का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और उनमें रेटिंग विधि की श्रेष्ठता पाई गई है। ऐसे कोकलिन एवं सुदरलैंड ने विभिन्न तरह के हास्यों का अध्ययन रेटिंग विधि तथा कोटिक्रम विधि द्वारा किया और पाया कि रेटिंग विधि में कोटिक्रम विधि की तुलना में रेटर के निर्णयों में कम प्रसारण होता है। उसी तरह साइमंड्स ने पाया कि साधारण परिस्थितियों में रेटिंग मापने द्वारा प्राप्त परिणाम रिजल्ट्स उतने ही विश्वसनीय होते हैं जितना कि कोटिक्रम विधि द्वारा प्राप्त परिणाम विश्वसनीय होते हैं। इसके अलावा रेटिंग मापने के कुछ और भी विशिष्ट लाभ हैं जो निम्नांकित हैं। एक, रेटिंग मापने में कोटिक्रम विधि की तुलना में काफ़ी समय लगता है। दो, रेटिंग मापने का प्रयोग उद्दीपनों जिनका रेटिंग करना है कि संख्या कम तथा अधिक होने पर भी आसानी से किया जाता है, परंतु कोटिक्रम विधि का प्रयोग उद्दीपनों की संख्या 30 या 40 हो जाने पर कठिन हो जाता है। तीन, रेटिंग मापने में रेटर की अभिरुचि अधिक लंबे समय तक बनी रहती है जिससे उसके द्वारा किए गए रेटिंग में विश्वसनीयता अधिक होती है। चार, रेटिंग मापने कोटिक्रम विधि मेथड और रैंक ऑर्डर से कम खर्चीला होता है। पाँच, रेटिंग मापने में यदि रेटर नवीन हो तो भी उसके द्वारा आसानी से रेटिंग कर लिया जाता है, परंतु कोटिक्रम विधि में नवीन प्रेक्षकों से अधिकाधिक त्रुटियां होने की संभावना बनी रहती है। पैराग्राफ चेंज, उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि रेटिंग मापने का प्रयोग कोटिक्रम विधि से श्रेष्ठकर होता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि रेटिंग मापने का प्रयोग हमें आँख बंद के करना चाहिए। जैसा कि ऊपर में बतलाया गया है, रेटिंग मापने के प्रयोग में भी कुछ त्रुटियां होने की संभावना बनी रहती हैं, अतः इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक करने ही शोधकर्ता अपनी शोध समस्या के बारे में तथ्यपूर्ण एवं निष्पक्ष आंकड़े संग्रह कर सकते हैं।